जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया।
ओम शांति। आप सभी को स्वस्थ जीवन की, खुशनुमा जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, और दूसरे ज्ञान से यही अंतर है कि हमारे ज्ञान में हम खुद अपने कर्म इंद्रियों का मालिक बनकर इस शरीर का अच्छी तरह संचालन करते हैं। जितना हम ज्ञान को सुनते हैं और सुनने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उतना हम अपने में ताकत भर सकते हैं। और जितना हमारे में ताकत आएगी उतना शरीर स्वस्थ होगा, हमारी कार्य कुशलता इफिशेंसी अच्छी होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हमारा मॉडल लोगों के सामने अच्छा होगा। ये ज्ञान केवल सुनने का नहीं है, ये ज्ञान अपने अंदर धारण करते जाना है। इसीलिए एक गुरु से जब पूछा चेले ने उसके कि आज की दुनिया में इतने प्रॉब्लम है, आप कैसे शांत रहते हो, तो गुरु ने कहा तू दुनिया में रहता है कि दुनिया तेरे में है। तो दो क्वेश्चन है, तू दुनिया में है कि दुनिया तेरे में है, क्या राइट आंसर होगा? अगर हम ये कहेंगे कि मैं दुनिया में रहता हूं, आई एम लिविंग इन द वर्ल्ड, तो प्रॉब्लम आते रहेंगे और मेरे मन में भी कई तरह के अपहीविल्स होंगे। पर जब मैं ये कहता हूं कि आई एम लिविंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज विद इन मी, दुनिया मेरे में है, तो उसका क्या फर्क आ गया? कि मैं दुनिया के ऊपर असर डाल सकता हूं, न कि दुनिया मेरे ऊपर असर डाले। वही जीवन में आगे बढ़ता है, लाइफ में आगे बढ़ता है, जो अपने सम्मान को 100% अपने साथ रखता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम जिसका अच्छा रहता है, जिसका अपना इवैल्यूएशन अच्छा रहता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो ज्ञान को रोज यूज करना है, सुनकर, चाहे आधा घंटा सुनो, एक घंटा सुनो, सुनने के बाद उसमें से एक ऐसा अच्छा पॉइंट ले लूं जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में आज बाबा ने मेरे लिए कहा। बाबा की मुरली में हर दिन नए नए पॉइंट्स आते हैं, उन नए पॉइंट्स में से आप ये सिलेक्ट करो कि मुझे कौन सा पॉइंट अपने जीवन में आज के लिए यूज करना है। इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ होता है एक्सप्लोरेशन। जो आत्मा जितना अपना एक्सप्लोरेशन करती है वही कोलंबस बनती है, जो अपना एक्सप्लोरेशन नहीं करती तो वो दूसरों के थपेड़ों में, दुनिया के प्रॉब्लम्स में अपनी नाव को डुबा देती है। तो पहली चीज है एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद एम्पावर बनो, एम्पावर बनने के बाद लाइफ को एंजॉय करो, और एंजॉय करने के बाद आपके अंदर जो एनलाइटमेंट होगा उसका असर दुनिया पे होगा। तो हम शुरू करते हैं कम समय में मेडिटेशन का प्रयोग कैसे करें, लाइफ में कौन आगे बढ़ता है। पहला पॉइंट है आप अपना विजन फोकस करो। आप अपने लाइफ का या यज्ञ का या इस ज्ञान मार्ग में आप अपना विजन फोकस करो कि आप इस ज्ञान में क्यों आए हैं, बाबा ने आपको क्यों सिलेक्ट किया है। तो अपना विजन क्रिएट करिए कि मैं एक साल में, दो साल में मेरा विजन क्या है, या मेरा फाइनल विजन क्या है, चाहे मेरे प्रोफेशनल लाइफ, चाहे मेरे ज्ञान की लाइफ। अपना विजन क्लियर करो। जिस व्यक्ति का, जिस आत्मा का विजन क्लियर होता है, उसकी एनर्जी सेव होती है, और जिसका विजन क्लियर नहीं होता है तो वो भटकता रहता है। जैसे अभी भी कई भाई बहन वहां देख रहे हैं, तो उनका विजन क्लियर नहीं है। यही बाबा ने हमें दिखाया है कि सब हलचल होते हुए मेरा फोकस क्लियर हो, और फोकस क्लियर नहीं है तो हमारी एनर्जी वेस्ट में जाती है। जो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा, सबसे ज्यादा एनर्जी हम सभी भाई बहनों की ज्यादा जाती है वेस्ट में, और वेस्ट बेस्ट नहीं बनने देता। दिन भर अगर हम अनवांटेड एक्टिविटी में लगे रहेंगे तो एनर्जी ड्रेन रहेगा, शक्ति खत्म होती जाएगी, और फिर जो मुरली है उसका भी मंथन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ जब आया हूँ, चार दिन के लिए आया हूँ, चार दिन में मुझे क्या विजन करना है, तो तब ठीक होगा, नहीं तो भटकते रहते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा जो भाई बहन मैच हारते हैं वो यहाँ आके भी भटकते रहते हैं, सामने चले जाएंगे, चीजें खरीदेंगे, फोन पे बात करेंगे, इधर उधर बात करेंगे, तो हमारी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो खत्म होती है। तो क्लियर योर विजन। लीडर वही बनता है जिंदगी में जिसका विजन क्लियर है कि मैं क्या करना चाहता हूं। सेकंड, अपना गोल ठीक करिए। उस विजन को प्राप्त करने के लिए मेरा क्या प्लानिंग है, क्या मेरे गोल सेट है, लक्ष्य क्या है। अगर गोल सेट नहीं है तो ये माइंड काम नहीं करता। ये माइंड काय पे काम करता है, दो प्रिंसिपल पे काम करता है। अवर माइंड वर्क ऑन पेन एंड प्लेजर। माइंड को हमेशा क्या चाहिए, प्लेजर चाहिए, आराम चाहिए, और वो दर्द से दूर भागता है, उसको दर्द नहीं चाहिए। और हम सभी को क्या आदत हो जाती है, जो हम लोगों ने बचपन से अभी तक अपने अपने लिमिट बनाई है, हद बनाई है, उसी में हम रहना चाहते हैं, और उसके कारण हम दर्द से दूर भागते हैं। पर जब हम इसको गोल सेट देते हैं कि दो महीने में प्राप्त करना है, तीन महीने में प्राप्त करना है, एक हफ्ते में प्राप्त करना है, तो ये माइंड काम करता है। अगर इस माइंड को रोज कहोगे कि कल कर लूंगा, तो अंदर वाला माइंड क्या कहेगा, हाँ आराम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी विनाश कहाँ हुआ, आराम कर ले, कल कर लेगा। तो खट से हमारा माइंड उस प्लेजर मोड में चला जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंफर्ट जोन में चला जाता है। और जो व्यक्ति कंफर्ट जोन में फंस जाता है वो वहीं का वहीं 10 साल 15 साल वहीं का वहीं रह जाएगा। ज्ञान में चल रहा हूं, 10 साल से चल रहा हूं, ज्ञान में चल रहा हूं, पर ज्ञान मेरे में नहीं चल रहा है। मेन चीज क्या है, हमें ज्ञान को अपने अंदर चलाना है कि जिससे कि जो आज मैं हूं कल दूसरा हूं, हर दिन मेरे में परिवर्तन आता जाए, तब तो मैं अपने फाइनल विजन की तरफ जो बाबा ने हमें दिया है प्राप्त करूंगा। नहीं तो गोल सेट नहीं करेंगे तो माइंड कंफर्ट लेवल पे चला जाता है। तीसरा है डिजायर, इच्छा, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे इसको प्राप्त करना ही है। इसीलिए पहले के जो वॉर लीडर्स रहते थे, उनकी कहानियां, उनकी रियल स्टोरी में पढ़ें, तो जैसे ही आर्मी वहां पहुंचती थी उस द्वीप के ऊपर, तो उसका जनरल क्या करता था, सब नाव को जला देता था, जिस नाव में वो चढ़कर उस द्वीप पर हमला करने आए थे, वहां की सब बोट्स को बर्न कर देता था। उससे क्या होता था, क्यों जला देता था, कि कोई भागने का रास्ता नहीं, नो एस्केप रूट। यहां भी हम क्या करते हैं, एस्केप रूट बनाते हैं, और हर व्यक्ति अपना अपना एस्केप बनाता है, और एस्केप याने भागना चाहता है या कुछ बहाने बनाता है जिसको लेजीनेस भी कहते हैं, और उसके कारण उसकी डिजायर क्लियर नहीं रहती। तो डिजायर भी रहे कि मुझे ये करना ही है। चौथा है विश्वास, फेथ, कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति में खुद के ऊपर फेथ है और खुद के लक्ष्य के ऊपर फेथ है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। अगर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरे अंदर क्या विचार चलेंगे? नेगेटिव विचार चलेंगे, हो नहीं सकता, डिफिकल्ट है, इतना बड़ा लक्ष्य है। पर जब हमारे अंदर अपना फेथ रहता है, निश्चय रहता है कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे में ये ताकत है। और बाबा का भी अप्रोच क्या है ज्ञान मार्ग में, बाबा ने सिंपल मेथड यूज किया है, साइकोलॉजी की इस मेथड को कहते हैं। आप अपना सेल्फ का इमेज इंप्रूव करो, जिसको बाबा के शब्दों में कहें, अपने सामान में टिक कर हर कार्य करो। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य का अर्थ है स्व आस्था। स्वास्थ्य दो शब्दों से बना हुआ है, स्व आस्था। इसका अर्थ है कि जब मैं अपनी सीट पर सेट हूं, अपने कॉन्शियसनेस में सेट हूं, तो मेरी हेल्थ अच्छी है। स्व आस्था का दूसरा मीनिंग होता है फेथ, बिलीफ। दो मीनिंग है, इसीलिए बाबा कभी कभी कहता है, अगर आप सीट पर सेट हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, सीट पर सेट नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ये लास्ट ईयर मुरली का था। क्लियर कट बाबा कह रहा है, सीट पर सेट हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, सीट पर सेट नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं अपसेट, कहते हैं ना मैं अपसेट हूं। अपसेट का अर्थ क्या हुआ? आई एम नॉट सेट इन माई सीट। और अगर मैं सीट पर बार बार, यहां सीट पर आप बैठे हुए हैं, बार बार उठें, हिले डुलें, तो पीछे वाले क्या कहेंगे? अपनी सीट पर सेट रहिए, डिस्टर्ब ना करिए। तो हम भी क्या करते हैं, बार बार अपनी सीट से अपसेट होते हैं, खड़े होते हैं। और क्यों खड़े होते हैं? हर आदमी को ये बहुत सटल बीमारी रहती है, और ये सबसे गहरी बीमारी होती है, और इससे बच गए तो काफी हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। वो क्या रहती है? बार बार सीट से कौन उठता है? बार बार सीट से कौन उठेगा? हाँ, सोचो, चर्न चर्न, थिंक थिंक थिंक, मंथन करो, एक मिनट अंदर जाओ, एक मिनट अंदर, अपनी सीट पर सेट। अपने आप से पूछ रहा हूं, मैं बार बार क्यों अपसेट हो रहा हूं? हाँ, अब बताइए क्या क्या आंसर है। नो कॉन्फिडेंस, चलो, और नेगेटिव थॉट्स, व्यर्थ संकल्प हो गया, गोल क्लियर नहीं है, चंचल बुद्धि, माइंड भाग रहा है, नो कॉन्फिडेंस। ज्यादातर ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी में एक चीज आती है, जो मैं हूं और जो मैं नहीं हूं, इन दो में जब डिफरेंस आता है, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई वांट टू प्रूव, जब आदमी प्रूव करना चाहता है जो वो नहीं है, उसके कारण वो बार बार खड़ा होता है सीट पर। बाबा के शब्दों में कहें, देवांग, ईगो, ये सबसे बड़ा ब्लॉक रहता है स्पिरिचुअल फिलॉसफी में। और इसीलिए हिंदी में इसको कहते हैं अभिमान। अभिमान का अर्थ क्या हुआ? अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, अगर उसको मान नहीं मिलता, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और हर व्यक्ति की क्या इच्छा रहती है, जो मैं करूं उसका एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों से, टीचर से, दूसरों से, और वो एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल होता तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है, वो अपने को प्रूव करना चाहता है। और अगर हम अपनी पर्सनालिटी में देखें, बचपन से हमारी जो पर्सनालिटी बड़े होने तक बन जाती है, तरह तरह के लेयर्स लग जाती है। बचपन में छोटा था, बहुत अच्छा था, कुछ मालूम नहीं था खराब क्या अच्छा क्या है, खेल रहा हूँ कूद रहा हूँ, लोगों की चिंता नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। बड़ा हो गया, माता पिता ने कहना शुरू किया ये खराब है ये ठीक है, तो लेयर लग गई एक, और बड़ा हुआ दोस्त हो गए, एक और लेयर लग गई, और बड़ा हुआ काम करना शुरू किया, तो 35 साल तक आदमी में तरह तरह की लेयर्स लग जाती है और हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है नारियल जैसी। नारियल भी रहता है ना, लेयर लेयर, रस्सी 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 रस्सी, तो इसीलिए हिंदी में कहते हैं नारियल का अर्थ हुआ ना रियल, रियल नहीं। अब जो रियल था वो क्या हो गया, छुप गया। मैं जो बचपन में था वो छुप गया, अब मैं बाहरी पर्सनालिटी से कर रहा हूं, इसलिए बार बार अपसेट होता हूं। 63 जन्मों की अगर मेरे संस्कार अंदर डले हुए हैं वो अनरियल है, वो नारियल है, पर मेरे अंदर जो अनादि और आदि संस्कार हैं वो रियल हैं। इसीलिए बाबा का पहला अप्रोच है इस नॉलेज का, स्वमान और सम्मान, जो इस मुरली में भी टच किया 15 अक्टूबर में। जितना मैं अपने को स्व के मान में रहूंगा उतना मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। आजकल हम कहते हैं सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस में जितना रहेंगे उतना हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। SOUL, SOUL का अर्थ है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। जितना मैं उस लाइट कॉन्शियस में रहूंगा मेरा मैटर फॉर्मेशन अच्छा होगा, और वो लाइट है लव, प्यार, सोमान। जितना मेरा अपने प्रति सोमान अच्छा है, प्यार अच्छा है, मेरी लाइट अच्छी तरह इस मैटर को काम करेगी। अगर मेरा लाइट अच्छा नहीं है तो ये मैटर फॉर्मेशन में भी बीमारी आएगी और तरह तरह की डिस ईज हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं डिजीज इज व्हाट, व्हेन ईज इज नॉट देयर देन इट बिकम डिजीज। तो सोमान खुद में और खुद के लक्ष्य के प्रति। फिर है इवैल्यूएशन, रोज हम अपनी चेकिंग करें, जो आज सुबह मैंने सेट किया रात को मैं उसकी चेकिंग करूं, इवैल्यूएट करूं। इसीलिए जो लीडर होता है रोज अपनी मेथड को चेक करता है, चेक एंड चेंज। रात को मैं चेक करूं आज के दिन क्या गलत हुआ, आज के दिन मैंने कहां हार खाई, उसको मैं चेक करूं और करेक्ट करूं, अपने में चेंज लाऊं। हर दिन हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, गलतियों से घबराना नहीं है, गलतियों से हमारे में हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए, गिल्ट नहीं आना चाहिए, इन्फिरिटी नहीं आना चाहिए, पर उस गलती को फिर से मैं करेक्ट कर दूं कि वो गलती वापस रिपीट ना हो। तो इवैल्यूएट करें, और अच्छी कंपनी वाले, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जो रोज रात को बैठकर अपनी चेकिंग करता है। हम सभी जानते हैं जब मम्मा पापा थे तो रोज रात को चेकिंग होती थी कि कहां हमने मिस्टेक की। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक एंड करेक्ट योर मिस्टेक। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। जिस व्यक्ति का जितना एक्सप्रेशन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वो लीडर बनता है। कम्युनिकेशन यानि आप उस इंफॉर्मेशन को जो हमें मिल रही है बाबा से, उस इंफॉर्मेशन को कैसे सिंपल करके लोगों को देते हो, उस इंफॉर्मेशन का प्रोडक्ट कैसे बनाते हो। इसलिए लीडरशिप की एक डेफिनेशन है, A leader is one who turn information into vision, यानी जो information को लेता है और उसका product बनाता है, और simple product लोगों को देता है तो लोग appeal करते हैं, नहीं तो गुरुओं का जो model रहा था difficult था, लोग उसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए ज्यादातर लोग क्या कहते थे, आप गुरु हम चेले, आप ही हमें स्वर्ग में ले जाएंगे, तो वो खुद मेहनत नहीं करते थे, इसलिए चेले चेले ही रहे, गुरु गुरु ही रहा। यहां बाबा क्या कहता है, मैं चेला नहीं बनाने आया हूं, मैं तुम्हें आप समान बाप समान बनाने आया हूं, लीडर बनाने आया हूं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम बाप जैसा कम्युनिकेशन स्किल अपने में डेवलप करें। आप देखेंगे जब बाबा आता है कैसे वो हर चीज को बोलता है, देता है, सिंपल करके देता है, डिफिकल्ट चीजें नहीं देता है, बाबा सिंपल लैंग्वेज यूज करता है और सिंपल प्रोडक्ट देता है, और वही व्यक्ति लोगों के अंदर तक घुस सकता है जो कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंपल कर दे। पर ज्यादातर अप्रोच क्या हुआ, लोगों ने सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड करी तो लोगों के ऊपर से चली जाती थी, इसलिए सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, चेंज नहीं आया। क्योंकि कई लोग कहते हैं लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं आया, इतने गुरु हो गए, इतना धर्म है, क्योंकि सुनते गए, उसको धारण नहीं किया। सिंप्लिसिटी, जितना आप ज्ञान में सिंपल रहेंगे उतना आपकी एनर्जी बढ़ेगी। सिंप्लिसिटी यानी सोच में, आपके व्यवहार में, आपके बोल में, आपकी पर्सनालिटी में सिंप्लिसिटी हो, इजीनेस हो, इजीनेस। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कई लोग ज्ञान में आने के बाद सीरियस हो जाते हैं, पहले ठीक थे, ज्ञान में आने के बाद और सीरियस हो जाते हैं, ओम शांति भी नहीं करेंगे, बस शाल को ओढ़ के सीरियस होते जाएंगे, योग भी बैठेंगे तो बिल्कुल आंख फाड़ के बैठे रहेंगे। लोग पूछते हैं हमसे कभी कभी, आपके यहां ऐसा हो जाता है क्या, पहले तो बहुत अच्छा था, यहां आने के बाद ये हो गया। नॉलेज का अर्थ है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है, मैं वही हूं जो पहले था, मैं पहले भी डॉक्टर था, अभी भी डॉक्टर हूं, कुछ बदल नहीं गया। पर क्या हो गया, क्या बदल गया, अब मैं हर कार्य को खुशी से प्यार से कर रहा हूं, ये फर्क आया, बाकी सब वही है। पर हम क्या करते हैं, बाहरी परिवर्तन जल्दी कर देते हैं और अंदर से नहीं करते हैं, और हमारा योग अंदर का है, बाहर का नहीं है। बाहर आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, पर अंदर के उसको परिवर्तन करना है, सिंपल रहना है, इजी रहना है, जिससे लोग समझें कि यहां जाने से मुझे फायदा होगा। अगर हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, घर से निकलते हैं, सेंटर पे आते हैं, सीरियस होके आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सीरियस रहते हैं, तो लोग कहेंगे ऐसे ही दुनिया सीरियस है, हम भी सीरियस हैं, ये भी सीरियस है, क्या फायदा यहां जाके। पर हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहता है, घर से निकलते हैं, खुशी से निकलते हैं, सबसे गुड मॉर्निंग, हेलो, ओम शांति करते हुए निकलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तो लोग कहेंगे कि कुछ ना कुछ इनसे और हम में फर्क है। देखो, एक जगह मैं गया था, एक लेक्चर के बाद वो एक व्यक्ति आया, वहां प्रदर्शनी लगी थी, तो वो बोलता है मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने सोचा किसी ने इसको कुछ कह दिया या इसकी फीलिंग हर्ट हुई। बोला कि आप लोग के गाइड्स जो हैं कितने अच्छे मुस्कुराते हुए सब समझा रहे हैं, मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूं हंसने की, पर हंस नहीं पा रहा हूं, आप लोग कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हो। तो क्या हुआ, उसने क्या देखा, चेहरा देखा। और हम सभी कौन है, देवी देवता बनने वाले हैं, हम आगे की दुनिया के मॉडल हैं, जो स्वर्ग की दुनिया आने वाली है वो हमारा प्रेजेंट लाइफ है। अगर मेरा प्रेजेंट लाइफ सीरियस होगा तो मेरी यादगार भी क्या मंदिर में बनेगी, सीरियस वाली, और कोई मेरे मंदिर में आएगा नहीं। इसीलिए हमारी यादगार कैसी बनी हुई है, ऐसी। हर देवी देवता को कैसे दिखाया, ऐसा दिखाया ना, तो हम लोग क्यों हो जाते हैं सीरियस? सीरियस इसलिए हो जाते कि हम हर चीज को पकड़ना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, केवल अपने मन को ठीक कर सकते, बाकी किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो वो व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, किसी को मालूम था? सब कुछ कर रहा था। सेकंड, कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, हम केवल अपने मन का राजा बन सकते हैं। कंट्रोल ना करें, नहीं तो ऐसा हम करने लग जाते हैं हर चीज को, तो बीमारी चालू हो जाती है। मसल टाइट हो जाते हैं, लिगामेंट टाइट हो जाते हैं, तो आर्थराइटिस, स्पॉन्डोलाइटिस हो जाती है। हमारा नेचर क्या है? ऐसा इजी, आई है जाएगी, जो चीज आई है जाएगी। देखो बाहर वाले क्यों दुखी हैं? वो पैसे को पकड़ते हैं, लॉकर में बंद कर देते हैं, जाए नहीं, छूट के नहीं जाए, तो बीमार होते हैं, बाईपास कराना पड़ता है। हमें कोई चीज को नहीं पकड़ना है, आई है जाइए। और लास्ट है लीडरशिप, लीडर यानि अपने खुद का मास्टर। अभी हेल्थ के लिए भी नई चीजें आई है। पहले हेल्थ के लिए कहते थे कि जीन्स अच्छे होना चाहिए, जीन्स अच्छे हैं तो आप में बीमारी नहीं होगी। पर अभी हम स्केल को देखें, नया स्केल जो आया है उसमें टोटल चेंज आया है। उसमें जीन्स को केवल 10 नंबर दिए हैं, और सबसे ज्यादा नंबर किसको दिए हैं? 100 नंबर। खुद की जिंदगी कैसी है? स्टेबल होम एंड पर्सनल लाइफ। आपकी पर्सनल लाइफ कितनी अच्छी है, बैलेंस में है, उसको 100 नंबर। जीन्स चाहे कोई सी भी हो, पर मेरी खुद की लाइफ अच्छी होना चाहिए। दूसरा दिया है 20 नंबर, जो हंस सकता अच्छी तरह, जो अच्छा हंसता है रोज, वो उसको 20 नंबर दिए हैं। अब हंसने के लिए भी आजकल बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। देखो हंसने के लिए भी लोग आजकल कहाँ जाते हैं? लॉफिंग क्लब में जाते हैं, और बड़े उससे कहते हैं मैं लॉफिंग क्लब का मेंबर हूं। और मैंने देखा वो क्या करते हैं, 50 रुपए देते हैं, हंसते हैं, वापस आते हैं, ऐसे ही सीरियस हो जाते हैं। हम जब मौका मिले, बाबा ने हमें क्या कहा है, हर सिचुएशन के ऊपर हंसो। कोई भी परिस्थिति आई है, माया आई है, बहुत मजा, जोरदार, आज मैच अच्छा होगा। मैच ही नहीं हो तो क्या मजा। कई बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा मुझे कोई तकलीफ नहीं देना, मुझे इसी जगह भेज दे, कोई मुझे कहे नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं करे, कोई मेरी टांग नहीं खींचे, ऐसा होगा? अब ऐसी प्रार्थना करें बाबा को तो बाबा भी प्रार्थना रिजेक्ट कर देगा। अभी कैसा करना है, बाबा मुझे परिस्थितियां दो, माया दो, मैं महावीर हूं। महावीर का अर्थ ही क्या होता है? मैच खेलना। महावीर के सामने परिस्थिति नहीं आए तो वो महावीर कैसे बनेगा? बाबा क्यों परिस्थितियां देता है, बीमारी क्यों देता है, तकलीफ क्यों देता है? ताकत है, जिसमें जितनी परिस्थितियां आती उसका तनाव मैनेजमेंट अच्छा होता है। अभी लेटेस्ट स्टडी में आया है, जिसके सामने चैलेंजेस अच्छे आते हैं और वो ठीक मुकाबला कर लेता, वो व्यक्ति का प्रतिरोधक शक्ति अच्छा काम करती है। और जो व्यक्ति भागता है परिस्थितियों से, उसकी प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है। तो कभी भी ये नहीं कहना, बंद कर दो इसको, थोड़ा गर्म हो जाता इसको। कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे को ऐसी जगह भेज दो जहां सब कुछ मुझे मिले। अगर आपको भेज भी दें ऐसी जगह जहां सब कुछ मिलेगा, खाना भी मिलेगा, कुछ काम नहीं करना है, पर एक शर्त रहेगी कि 24 घंटे बाबा को याद करना होगा। एक बार नारद को भी ऐसा ही हो गया था। नारद को अहंकार आ गया कि मेरे से अच्छा कोई नहीं भक्त, मैं तो भगवान के पास ही रहता हूं। तो भगवान ने उसको कहा कि जा मेरे पृथ्वी पर, जा एक मेरा किसान है उसको देख, वो मेरा सबसे अच्छा भक्त है। तो नारद देखने आया उस किसान को, देखा कि किसान सुबह उठकर हल जोतते समय भगवान को याद करता है, रात को सोने के पहले भगवान को याद करता है, बड़े प्यार से याद करता है, दो बार करता है। नारद गया वापस, भगवान को बोला, अरे भगवान वो तो दो बार ही याद करता है, मैं तो आपके साथ ही रहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने उसको एक ग्लास दिया, उसमें तेल भर दिया पूरा, बोला ये तेल का ग्लास लेकर तीनों पृथ्वी लोक, तीनों लोक में जा, एक बूंद भी नहीं गिनना चाहिए, और फिर मेरे पास आ। नारद लेकर गया बड़ा एनर्ज फोकस करके, एक भी बूंद नहीं गिरने दी, वापस आया, बड़ा खुश हुआ कि भगवान मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। भगवान ने कहा कितनी बार मुझे याद किया? नारद ने कहा नहीं। तो बोला वो तो इतना अच्छा है, घर गृहस्थ में रहता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों को देखता है, कार्य करता है, पर दो बार प्यार से तो मुझे याद करता है। तो इसीलिए बाबा कहता है घर गृहस्थ में रहते हुए भी, अपनी ड्यूटी करते हुए भी ट्रस्टी भाव से रहते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसीलिए अपने पार्ट को कभी भी कम नहीं समझना। जो पार्ट मुझे दिया गया है बहुत अच्छा है। इसीलिए पहला गीत क्या बजाया, पहला गीत क्या बजा था? जाने क्या मुझ में देखा। यहां जो भी गीत बजता है उसका अर्थ रहता है। इसका अर्थ है कि भगवान ने मुझ में कुछ देखा तभी तो अपना बनाया। वो जो देखा उसको बाहर लाना है, उसका ही यूज करना है, और उसका जितना हम यूज करेंगे उतना हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहेगा, और जितना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। इसलिए कहा जाता है लॉफिंग इज ए इंटरनल जॉगिंग, एक्सरसाइज इज ए एक्सटर्नल जॉगिंग। तो इजी रहें, हंसते रहें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। डाइट ठीक खाना है, खाना भी अच्छी तरह बैलेंस में खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। नहीं तो लोग आजकल खाना भी जैसे काम हो गया, 12 बजे के खाना निपटा लो, भूख है तो खाओ, धीरे धीरे खाओ, प्यार से खाओ, इंजॉय से खाओ। अल्टरनेट एक्टिविटी, और मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे स्किल्स भी मेरे में आने चाहिए। तो इसीलिए कहा कि तनाव का सबसे बड़ा कारण यही रहता है, चाहे वो व्यक्ति ज्ञानी है चाहे ज्ञान नहीं है, ये पहला रीजन यही रहता है कि मैं क्या हूं और मैं क्या अपने को सिद्ध करना चाहता हूं। इसलिए हमें ज्ञान में सिद्ध नहीं करना है। और बाबा का पहला लेसन क्या है, ज्ञान का पहला लेसन क्या है, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मेरे जैसा सुंदर कलाकार इस दुनिया में नहीं है। हर आत्मा एक यूनिक है, हर आत्मा में एक दुनिया समाई हुई है, उस दुनिया को निकालना ही मेडिटेशन है। तो इसलिए अपने को प्रूव नहीं करें, और ज्यादा बीमारी का कारण यही रहता है, हम प्रूव बहुत करते हैं, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं। एक और बहुत अच्छा वाक्य याद आया, जैन मास्टर का था, उससे काफी सीखा मैंने। दो चेले खड़े हुए हैं और जैन मास्टर, एक चेला जैन मास्टर को कहता है, मास्टर मास्टर ये चीज ऐसा होना चाहिए। तो मास्टर ने कहा यू आर राइट, तुम ठीक हो। दूसरे चेले ने कहा नहीं मास्टर, ये चीज ऐसा होना चाहिए। तो मास्टर ने कहा यू आर राइट, तुम भी ठीक हो। तो तीसरा चेला जो खड़ा हुआ था बोला मास्टर ऐसे कैसे, ये भी राइट ये भी राइट, दो में से एक राइट हो सकता है। तो मास्टर ने कहा यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी ठीक हो। तो मास्टर ने क्या सिखाया, सब राइट है, सब अपने वे में राइट है, गलत और राइट, सक्सेस फेल्यूर, पेन प्लेजर, ये हमारे माइंड की उपज है। जब हम उसमें इमोशनल टच दे देते हैं तो वही चीज हमें खराब लगती है या अच्छी लगती है। बाकी हर घटना इस दुनिया में क्या है, न्यूट्रल है। जैसे मैच हो रहा है, मैच आप देख रहे हो, अब मैच में एक जीतेगा एक हारेगा। अब आपने बहुत सीरियसली मैच को देखा, क्यों हारी क्या हुआ, तो किसका नुकसान हुआ, मैसेज कहां गया, शरीर में गया। ये अपने शरीर बहुत अच्छा माइंड का दोस्त है, यहां जो चलता है उसका संदेश खट से यहां आ जाता है हार्ट में, और यहां एक ग्लैंड लगी हुई है यहां आ जाता है। ये कहती है अच्छा तेरे को मजा नहीं आ रहा है, मैं भी करके दिखाती हूँ, तो वो तनाव वाले हार्मोन छोड़ना चालू कर देती है, इसको मजा नहीं आ रहा है, और इसके कारण शरीर में डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी घटना को देखें, घटना को घटना के रूप में लें, उसको अपनी भावनाओं से न जोड़ें, इमोशन से न जोड़ें। मैच मैच है, उसके कारण मुझे हार्ट अटैक नहीं आए, नहीं तो कईयों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि मैच को उन्होंने मैच के रूप में नहीं लिखा, इसलिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सुंदर शक्ति, चैतन्य शक्ति हूं, मेरे जैसा सुंदर कलाकार कोई नहीं। इसलिए साइकोलॉजी में एक पर्सनालिटी होती है, आपसे पूछे आप कैसे हो, हाउ आर यू, आप कहिए आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। अगर ये नहीं डालते हैं तो इंडिया में रहना मुश्किल हो जाए, रोज प्रॉब्लम, रोज नई नई चीज, देखते हुए भी ठीक है, ठीक है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी हो, अंदर टेंशन नहीं आया। नहीं तो क्या होता है, सबसे बड़ा मेरे को भी जब प्रॉब्लम आता था, वापस आया तो गाड़ी में बैठते थे तो सोचते थे आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में कई तरह की चीजें होती हैं, आपको मालूम है इंडिया में, सड़क पर साइकिल वाला, स्कूटर वाला, बैलगाड़ी, गाय, बैल, बंदर सब आ रहे हैं। तो बड़ा वो होता था, लोगों में अकल नहीं है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, जहां पुलिस का वो लगा हुआ है बैरिगेट, वहां बैल खड़ी हुई मुस्करा रहा है, तो बड़ा गुस्सा आता था। 2 महीने हो गए, देखा कुछ नहीं हो रहा है, सब तो वही का वही कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा मुझे परिवर्तन होना है, तो फिर मैंने अपना प्रोग्राम चेंज किया, जो नेगेटिव प्रोग्राम था उसमें डाल दिया दूसरा प्रोग्राम। क्या डाला? बहुत अच्छा है, भारत जैसा कोई देश नहीं है, आई लव माई इंडिया। तो अब क्या हुआ, 3 महीने बाद वो फाइल खुलती थी, अब ये गीत बजने लगता था, आह क्या जोरदार, कितना अच्छा है, हमारी गाय भी सड़क पर मिनिस्टर का काम करती है, पुलिस का काम करती है, तो गाय बैल को भी हेलो करने लगे, हेलो काउ, हाउ आर यू, ओके। फिर 3 महीने बाद ये अब खुलती नहीं है, पहले ही मालूम ये सब कुछ होगा। मुझे याद है दादी जब फॉरेनर्स आए थे ऊपर, तो दादी ने उनसे पूछा आप भगवान को याद करते हैं, अक्टूबर में जो रिट्रीट थी, तो लोगों ने, उन फॉरेनर्स ने कहा, क्योंकि वो लोग अहमदाबाद तक प्लेन में आए थे और अहमदाबाद से माउंट आबू आए थे कार में आए थे, बोला पहले तो कभी इतना भगवान को याद नहीं किया, पर ये 4 घंटे अहमदाबाद से माउंट आबू भगवान को हर मिनट याद किया। दादी ने कहा क्या हो गया, बोला वो हर 10 मिनट बाद ड्राइवर जो जैसे गाड़ी चलाता था वो हमारे देश में नहीं होता, हर बार हमें डर लगता था गए, इसलिए भगवान को याद करते थे, भगवान ये तेरा ही देश है, तू ही इसको चला रहा है। तो इसीलिए हर चीज को खुशी से लेते हुए चलते चलना। नेक्स्ट। अब कौन लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं, कौन लोग ज्यादा जीते हैं, कौन लोग ठीक रीति दुनिया में जीते हैं, तो इसके ऊपर स्टडी की थी उन्होंने। जिनका अपना अंदर का सिस्टम, जिसको साइकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, वो स्ट्रांग रहता है तो उनका बायोलॉजिकल सिस्टम भी अच्छा रहता है। जैसे कहते हैं 3 तरह की उम्र रहती है, एक उम्र आपकी जो उम्र है 50 साल, 60 साल, 30 साल, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। दूसरा होती है आपकी बायोलॉजिकल एज, आपके अंदर के सेल्स कैसे हैं, सिस्टम कैसे हैं। तीसरा एज होती है साइकोलॉजिकल एज, जिसको आप कैसे फील करते हो, चाहे आप कितनी भी उम्र के हैं, 70 साल के हैं, एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, तो आपकी साइकोलॉजिकल एज क्या रहेगी कि मैं यंग हूं। तो तीनों एज में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है कि आप अपने को कैसा फील करते हैं उस उम्र में भी। नहीं तो कई लोग होते हैं ना, कहते हैं मैं तो रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चों की शादी हो गई, तो उन लोगों को बीमारी जल्दी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो कहते हैं बार बार भगवान को, सब कुछ हो गया, अब मैं रिटायर्ड हो गया, बच्चे ठीक हो गए, अब मैं खाली हो गया। तो भगवान सोचता है, अरे ये खाली हो गया, इसको कुछ काम नहीं है, इसको कुछ काम दो तो बीमारी दे देता हैगा, फिर उसमें लगे रहो। इसीलिए भगवान को कभी नहीं कहना मैं रिटायर्ड हुआ, क्या कहना, मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ, जॉब से रिटायर्ड हुआ, जिंदगी से रिटायर्ड नहीं हुआ। जब तक जिंदगी है तब तक मेरा जीवन है। इसीलिए कहा अपना विजन हमेशा रखो, कि मेरा विजन जिन लोगों का रहता है वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हर साल कुछ नया करते जाओ, ये 6 महीने में मुझे ये करना है, ये 6 महीने में ये करना है। मुझे डॉक्टर प्रताप का याद आता है, बहुत अच्छा वो बताते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ग्लोबल हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा है कि मैंने निश्चय कर लिया है कि हर साल हॉस्पिटल में एक नया डिपार्टमेंट ऐड करते जाना है। आप देखोगे जो ग्लोबल हॉस्पिटल इतना छोटे से चला, इतना बड़ा होता गया, उनका यही है कि हर साल एक नई चीज जोड़ दूं। ब्लड बैंक, आई हॉस्पिटल, होलिस्टिक डिपार्टमेंट, मैग्नेटोथेरेपी, तो हर साल कुछ ना कुछ लक्ष्य दो। तो हमारी बॉडी भी हमें सपोर्ट करती है, अगर हम लक्ष्य नहीं देते हैं तो बॉडी भी सपोर्ट नहीं कहती है, वो कहेगी अरे ये तो सब हो गया, अब तो जल्दी जा, ठीक है। तो अभी अपने में वो लक्ष्य को, विजन को क्रिएट करो। 3 फैक्टर बताए, उनका पहला फैक्टर था ACE। जैसे टेनिस में सर्विस जब करते हैं और अच्छी सर्विस करते हैं, सामने वाला नहीं उठा सकता, तो उस सर्विस को कहते हैं एस सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस। एस का अर्थ है ACE, ACE का अर्थ है अवेयरनेस, अटेंशन, कनेक्टिविटी, एक्सप्रेशन। 3 शब्दों से बना हुआ, अपने ऊपर अटेंशन रखो, अपने को कनेक्ट करो और अपने को एक्सप्रेस करो। तीनों चीजें ठीक काम करती तो हमारा मेडिटेशन अच्छा रहता है। नेक्स्ट, तो हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, और कैपेसिटी को कहां तक ले जाना है, जो बाबा ने कहा लास्ट वाली कर्मातीत, लास्ट वाली को साइकोलॉजी में कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है कि मेरी मेंटल कैपेसिटी इतनी अच्छी हो गई है कि मैं हर घटना को यहीं का यहीं ठीक कर लेता हूं, उस घटना को शरीर में जाने नहीं देता, क्योंकि जितना शरीर में जाने दूंगा शरीर में डैमेज होगा। कर्मातीत का अर्थ है कर्म करते हुए कर्म और कर्म के रिजल्ट का असर मेरे ऊपर न आए, और वो कैपेसिटी हर दिन बढ़ाते जाना है, डे बाय डे इंप्रूव करते जाना है। इसका बहुत डिटेल है, बहुत जा सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारा जो आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार से जो बनी हुई है, जिसको कहते हैं माइंड इंटेलेक्ट संस्कार, MIS, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा हार्डवेयर से काम करता रहता है। सॉफ्टवेयर हमारा कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, आत्मा है, हार्डवेयर हमारा ब्रेन और बॉडी है। दोनों का इंटीग्रेशन अच्छा है तो बॉडी और सॉफ्टवेयर अच्छी तरह काम करते तो सिचुएशन अच्छी तरह फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे जो 7 गुण हैं वो ही हम हैं। आत्मा के कौन से 7 गुण हैं? पहला लेसन, पहला गुण मस्तिष्क को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, कौन सा गुण? ज्ञान, नॉलेज। जितना हमारा नॉलेज का मंथन अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, उतना ब्रेन का नेटवर्क अच्छा होगा, ब्रेन खुलेगा, नहीं तो ब्रेन बंद का बंद रहेगा। इसलिए मैंने कहा मंथन बहुत जरूरी है, मंथन से नेटवर्क बनता है। तो ब्रेन को चाहिए नॉलेज, फिर हमारा चेहरा, 2 आंखें, नाक, इंद्रियां, मेजर इंद्रियां यहां आ गई। 5 चेहरे को क्या चाहिए? चेहरे पे चमक कब आती है? प्यूरिटी, प्यूरिटी पवित्रता अंदर और बाहर एक, सोच फेथ और करना, हेड हार्ट हैंड, तीनों में हार्मोनी, तो चेहरे पे चमक आती है, प्यूरिटी रहती है, उसका ऑरा भी अच्छा होता है, वाइब्रेशन भी अच्छे होते हैं। और लास्ट में हमारा प्रोटेक्शन यही करेगा, हमारा ऑरा जितना अच्छा रहेगा, वाइब्रेशन अच्छे रहेंगे, वो लोगों को खींचेंगे। और फ्यूचर सेवा यही है, फ्यूचर की सेवा भाषण की नहीं रहेगी, फ्यूचर की सेवा आपके शब्दों में कितना ऑरा है, आपके संकल्पों में कितना ऑरा है। एक संकल्प लोगों को हील करेगा, ठीक करेगा, इसके लिए हमारा पुरुषार्थ अच्छा चाहिए। तीसरा है फेफड़ा, लंग। लंग को क्या चाहिए? शांति, पीस। जितना शांति अच्छी होगी, ब्रीदिंग अच्छी होगी। नहीं तो आजकल देखो सांस के भी क्लब बन गए हैं, प्राणायाम, सांस लेना सिखाते हैं, यानी हमें सांस लेना भी नहीं आता, हंसना भी नहीं आता, हमें उन क्लब में जाना पड़ता है। हमसे अच्छे तो वो जानवर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनको कोई क्लब में जाना नहीं पड़ता। चिड़िया खुद ही उड़ना चालू कर देती है, चिड़िया को देखा क्या, किसी क्लब में गई, फ्लाइंग क्लब में गई, उड़ना लग जाती है। हमको क्लब में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यहां दुखी होना चालू हो जाते हैं, यहां टेंस होते हैं, तो ब्रीदिंग कैसी हो जाएगी, छाती वाली। ब्रीदिंग कैसी होना चाहिए, पेट से जाना चाहिए छाती में। ज्यादातर टेंस में क्या होता है, ये हो जाती है, तो जल्दी जल्दी सांस गिनना चालू कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो क्या होगा, जल्दी ऊपर चले जाएंगे। हमारी सांसें गिनी हुई है, सांस को ठीक से लो, आराम से लो, शांति से लो। हार्ट को क्या चाहिए, प्यार, लव। आंतों को क्या चाहिए, खुशी। खाना खाते हैं ना, कहते मजा आ गया। अब खाना कौन कंट्रोल नहीं कर सकता, कौन ज्यादा खाता है, यहां भी जैसे सब मिलता है, चाय दही दूध सब खा लेंगे, रोटी भी ले लेंगे, दही भी ले लेंगे, चाय भी ले लेंगे, कॉफी भी ले लेंगे, पेट तो पेट है। अब सब खा लोगे तो क्या होगा, बेचारा अंदर क्या होगा, इसलिए गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी हो जाती है। पिछली बार मुझे याद है, पिछले साल एक माता बैठी थी मेरे पास ही, पूरे बाबा के टर्न में 3 घंटे ठीक से नहीं बैठ पाई, गैस एसिडिटी, 1 सेकंड भी बाबा से दृष्टि नहीं ले पाई। क्यों? खाने पे कंट्रोल नहीं। देवताओं का खाने के ऊपर कंट्रोल होता है, क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, वो धीरे धीरे आप खाइए। चीजें बाबा के यज्ञ में सब मिलती है, पर मेरे शरीर को ठीक लगती है कि नहीं वो देखो, और चीजों को मिक्स नहीं करो, वो खाओ जिससे शक्ति आए। और यहां कंट्रोल नहीं है तो खाने से निकलेगा ही, कहीं तो खुशी चाहिए ना, तो इसीलिए वो खाने में ढूंढते हैं। और ज्यादातर ब्राह्मण का इसीलिए वीकनेस रहती है खाना, ब्राह्मण को खाना अच्छा खिला दो खुश हो जाता है, पर अगर यहां खुशी है तो इसकी जरूरत नहीं है। कम मिनिमम में आपकी शरीर की एनर्जी मेंटेन रहेगी। फिर है लास्ट शक्ति, पावर। पावर किसको चाहिए, हड्डियों को और मसल्स को, दो चीजें हर आत्मा को चाहिए, शक्ति और प्यार, पावर एंड लव, दोनों चाहिए, पावर अंदर प्यार बाहर में। और लास्ट हमारा ब्लिस आ जाता है, आनंद आ जाता है। और जब आनंद आ जाता है तो तब हमारे में पूरा शरीर का फ्लो चालू हो जाता, बंद कर दो। तो मेडिटेशन का यूज हम रोज एक पॉइंट को लेकर करें, एक पॉइंट को सिलेक्ट करके अपने माइंड को वो प्रोग्राम दीजिए। हमारा माइंड ज्यादा चीजें नहीं ले सकता। जैसे लास्ट टाइम एक कन्या आई, कहती है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, कहती ये यहां जाऊं ये क्लास करूं, ये करूं 6 क्लास करूं, मेरा तो ये हो गया। मैं सोचती हूं मैं बिंदु रूप बन जाऊं, फरिश्ता बन जाऊं, आज ही बन जाऊं। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूं मैं शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, क्या हो रहा है माइंड में, क्या हो रहा है? मैंने चालू किया, मैं शांत स्वरूप हूं। अभी ब्रेन ने मैसेज गया ब्रेन को कि इसको शांति चाहिए, शांति की फाइलें खुलना चालू हुई कि इसको शांति चाहिए, घट से बोल दिया शक्ति स्वरूप हूं, फिर बोल दिया आनंद स्वरूप हूं। माइंड कहेगा इसको चाहिए क्या, कभी बोलता शक्ति कभी बोलता शांति, तो एक फाइल खुलती फिर बंद हो जाती। इसीलिए भक्ति में क्या होता था, भगवान को याद करते थे गणेश को, डर लगा फिर हनुमान को, फिर डर लगा श्री कृष्ण को, बेचारा हनुमान चालू हुआ उतरना, इतने में याद कर लिया गणेश को, फिर गणेश आना चालू हुआ, फिर याद कर दिया। डर के मारे भक्ति में ज्यादा को याद करते थे। अब यहां क्या करना है, एक समय पर एक चीज, शांति चाहिए शांति लो, आज के दिन शांति, पूरा शांति का प्रोग्राम डाल दो, सॉफ्टवेयर डाल दो, तो जो हमारे आने में। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, एक छोटा सा आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं कैसे इसको यूज करना है। हाँ, बैठ जाए आराम से, 5 मिनट सीधे बैठ जाए, एक्टिव अलर्ट बैठे, दोनों हाथों को ऊपर करें, अपने मन में कहें मैं जिंदा हूं, एक्टिव हूं, अलर्ट हूं, क्योंकि 12 बजे नींद आना चालू हो जाती है। हाँ, नीचे करो, सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने खुद के कमरे में चले जाइए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के मध्य अपने कमरे में विराजमान हूं, मैं ऊर्जा हूं,
के भर भाल पर तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर। प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ, मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का तार हूँ,
वापिस नॉर्मल कॉन्शियस में आ जाएं, अपने को ढीला छोड़ें, फिर कभी जब मौका मिलेगा उस डिटेल प्रोसेस को कराएंगे, क्योंकि करीब आधा घंटा लगता है इस प्रोसेस से, कैसे हम अपने को हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो लास्ट में अपना हाथ ऊपर करिए, लास्ट एक्सरसाइज, अपनी पीठ खुद थपथपा दो, आप सब कितने सुंदर ब्यूटीफुल, भगवान ने आपको चुन लिया, मेरे जैसा सुंदर कलाकार कोई नहीं। ओम शांति।